ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। भारत और रूस 2030 तक व्यापार लक्ष्य 100 अरब डॉलर निर्धारित कहने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच वार्ता आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रही। भारत और रूस ने प्रसार भारती और टीवी नोवोसी के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र, बड़े पैमाने पर व्यापार, पूंजी संबंध, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा और सुरक्षा से संबद्ध अधिकारी भी शामिल रहे। श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रूस सेना में गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि रूसी पक्ष ने सभी भारतीय नागरिकों को रूसी सेना की सेवा से शीघ्र छुट्टी देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्षों में भारत रूस संबंध और प्रगाढ़ होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने कहा कि पिछले 40-50 वर्षों से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की। श्री मोदी ने भारत रूस सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारतीय किसानों और भारतीय उपभोक्ताओं को मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया ईंधन की चुनौती का सामना कर रही थी, तब रूस के समर्थन से भारत को पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। इस अवसर पर श्री पुतिन ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए समाधान खोजने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव तरीके से मॉस्को की सहायता करने के लिए भारत की तत्परता दोहराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। ये पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया रवाना हो गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी पेपर लीक मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार इन्हें बिहार के नालंदा और गया जिलों से गिरफ्तार किया गया है। केंद्र ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत की गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों के 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें अधिकतर तराई क्षेत्र के हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन 27 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के कुमाऊं के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण किया। 7 और 8 जुलाई को मूसलाधार बारिश के कारण ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिलों के कुछ स्थानों पर जल भराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान मध्य पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के ऊंचाई वाले इलाकों, सिक्किम, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 12 जुलाई तक तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से पूजा वस्त्राकर और राधा यादव ने मिलकर 7 विकेट लिए, जिसके दम पर उसने दक्षिण अफ्रीका को 17 ओवर और 1 गेंद में 84 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद भारत ने 10 ओवर और 5 गेंदों में बिना किसी नुकसान के 88 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।